अब आप रजनीश कुमार यादव के आवाज में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर में उनकी कविताओं की व्याख्या एवं विशेषताएं सुनेंगे। उनकी पहले कविता का शीर्षक है मधुप गुनगुना कर कह जाता। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस कविता की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इस कविता में प्रसाद ने आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा प्रेमचंद जी के आधार पर लिखी गई थी, क्योंकि प्रेमचंद जी हंस मासिक पत्र को एक आत्मकथा विशेषांक निकाल रहे थे और उसके लिए प्रसाद जी से भी बहुत आग्रह किया था कि आप यदि गद्य में अपने बारे में कुछ नहीं लिख कर देना चाहते हैं तो कम से कम पद्य में ही कुछ पंक्तियां अपने जीवन के बारे में लिख कर दे दें। प्रेमचंद जी के विशेष आग्रह पर अनुरोध करने पर यह कविता आत्मकथा के रूप में प्रसाद ने लिखी, जो हंस में जनवरी फरवरी 1922 ईस्वी के आत्मकथा विशेषांक के अंतर्गत प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुई थी। इसमें प्रसाद ने पहले तो यह संकेत किया है कि वसंत और पतझड़ की तरह न जाने कितने जीवनों के इतिहास इन अनंत नीलिमा से बनते और बिगड़ते चले आए हैं और उनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। मैं भी कोई ऐसा असाधारण युग पुरुष नहीं हूँ जिसकी जीवनी लिखी जाए या जिसके जीवन का इतिहास किसी पत्र में प्रकाशित किया जाए। मेरा जीवन तो भूलों एवं दुर्बलताओं से भरा हुआ है। मेरे जीवन गागरी तो रोती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो उल्लेखनीय हो। फिर मैं अपनी दुर्बलताओं एवं भूलों का विवरण देकर अथवा दूसरों की प्रवंचनाओं का वर्णन करके हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। मैंने अपने बचपन में जो सुख समृद्धि के दिन देखे थे और मैं अपने भविष्य में भी जिन सुखों की कामना किया करता था, वे फिर मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। अब तो अतीत जीवन के सुखों की स्मृति ही मेरे जीवन का सहारा बनी हुई है। इसलिए मैं अपने इस लघु एवं साधारण जीवन की बड़ी बड़ी कथाएँ कैसे कह सकता हूँ। अच्छा यही है कि मैं औरों की कथाएं सुनता रहूं और स्वयं मौन रहूं, क्योंकि मेरी इस भोली भाली आत्मकथा में रखा ही क्या है और इसे सुनकर भी आपको क्या आनंद आएगा। अभी तो वह समय भी नहीं आया जबकि मैं अपनी जीवन गाथा कहने के योग्य हो सकूं, क्योंकि अभी तो मेरी व्यथा ही मौन होकर एवं थक कर सोई हुई है। कवि प्रसाद कहते हैं, भौरा गुनगुना कर न जाने बसंत कालीन सुखमय जीवन की अभी कौन सी कहानी कहकर उड़ जाता है, और उधर पतझड़ के कारण पेड़ पौधे से न जाने कितनी संख्या में पत्तियां लगातार मुरझा मुरझा कर गिरती रहती हैं। इस तरह इस संसार में बसते बसंत के वैभव एवं पतझड़ के दैन्यपूर्ण जीवन की स्थिति बराबर चलती रहती है। ऐसे ही इस गगन एवं विलास आकाश के अंतर्गत अगणित बसंत एवं पतझड़ जैसे जीवनों के इतिहास व्यंग के कारण अपना अपवित्र उपहास करते ही रहते हैं। अर्थात इस जगत में न जाने कितने ऐसे जीवन व्यतीत कर हो चुके हैं जिन पर लोग व्यंग कसते हुए उनकी हंसी मजाक उड़ाया करते हैं। ऐसा होते हुए भी तुम मुझसे यह कहते हो कि मैं अपने अतीत की कमजोरियों को कथा के रूप में लिखकर तुम्हें दे दूं। हो सकता है कि उन्हें पढ़कर तुम्हें तो सुख मिलेगा, परंतु तुम्हें वहाँ कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे जीवन की कहानी तुम्हें वैसे ही खोखली जान पड़ेगी जैसे कि एक खाली गगरी होती है। परंतु मुझे भय है कि कहीं तुम ही अपने को यह न समझने लगो कि इसके जीवन को मैंने ही शून्य बना दिया है और इसके जीवन का संपूर्ण रस लेकर अपना जीवन सुखमय बना लिया है। मेरी यह अत्यंत हास्यास्पद स्थिति है कि मैं अपने जीवन में अत्यंत भोला भाला बना रहा हूँ और लोग मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते रहे। आज मैं नहीं चाहता कि उन सभी बातों का उल्लेख करके एक ओर तो मैं अपने भोलेपन की हंसी उड़ाऊं और दूसरी ओर अपने भूलों का तथा दूसरे लोगों की धूर्तता या धोखेबाजी का विवरण प्रस्तुत करूं। आज मैं मधुर चांदनी रातों के समान अपने वैभवपूर्ण दिनों की पवित्र गाथा किसी के सामने कैसे कहूं? उसके कहने से लाभ ही क्या है, क्योंकि वे वैभव एवं समृद्धि के दिन के सामने ऐसे ही व्यतीत हो गए जैसे खिलखिलाकर हंसते हुए कोई बातें करता हो और फिर वह संसार में न रहे। मैंने बचपन में जिन वैभवपूर्ण दिनों की झांकी देखी थी और यह कामना की थी कि ऐसा वैभव एवं ऐसा ऐश्वर्य मुझे सदैव प्राप्त होता रहेगा, वे सभी सुख मुझे कहाँ मिले, क्योंकि तनिक समझदारी के आते ही अथवा किशोरावस्था में ही वे संपूर्ण वैभव एवं ऐश्वर्य के दिन आते आते ही समाप्त हो गए। मैं अपने अतीत वैभव की स्थिति का क्या बताऊँ? मेरे परिवार में वैभव एवं समृद्धि की ऐसी सजल अरुणिमा छाई हुई थी जैसे कि किसी सुंदर युवती के कपोलों पर सजीव अरुणिमा छाई रहती है। इतना ही नहीं, उन वैभवपूर्ण दिनों की मनोहर अरुणिमा चारों ओर छिटकी हुई थी और उस क्षण ऐसा प्रतीत होता था मानो लालिमा में परिपूर्ण उषा भी उसी मधुर अरुणिमा से अपने मालक श्रृंगार करती हो। आज उन्हीं वैभवपूर्ण अतीत के सुखों को स्मृति मुझे थके हुए पथिक के लिए राह का संबल बनी हुई है, इसलिए मेरा जीवन तो उस कुदरी के समान तुच्छ साधारण एवं महत्वहीन है जिसके हर जीवन में चिथड़े ही चिथड़े रहते हैं और कहीं भी कोई सुंदर वस्तु का टुकड़ा नहीं होता। विशेष मधुप अपनी इस पंक्ति में मधुप व्यवसायी जीवन का प्रतीक है, क्योंकि बसंत के वैभव में ही भौरे कलियों पर मडराते हुए अपनी प्रेम कहानी कहा करते हैं। जैसा कि प्रसाद ने आंसू में लिखा है, कलियों की उन्मुख देख सुनते यह कपट कहानी फिर देखा उड़ जाते कि मधुर को कर मनवानी। इतिहास के द्वार अपना उपहास करने में मानवीकरण अलंकार है, गागर रीति में रूपातिशयोक्ति अलंकार है, रस में श्लेष अलंकार है, सरलते की हंसी उड़ाले में मानवीकरण अलंकार है, कथा में पुनरुक्ति प्रकाश एवं रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, मौन व्यथा के सोने में मानवीकरण अलंकार है। प्रसाद के अगले कविता का शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किशलय का अंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। इस कविता की व्याख्या इस प्रकार है, रहस्यवादी कवि प्रसाद अपनी अलौकिक प्रियतमा अथवा अलौकिक दिव्य शक्ति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे सखी जागो, देखो रात बीत गई है, उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर जल भरने आ गई है और अपना तारा रूपी घड़ा जल में डुबो रही है। अर्थात रात बीत रही है, उषा की लालिमा प्राची दिशा में झलक रही है और एक एक करके तारे डूबते जा रहे हैं। रहस्यवादी कवि पुनः अपनी अलौकिक सखी को संबोधित करता हुआ कहता है, हे सखी, देखो पक्षीगण कुलकुल जैसी अब मधुर कलरव कर रहे हैं, वृक्षों के कोमल पने रूपी पत्ते रूपी अचल आंचल हिल रहे हैं। अंत में पुनः यह रसवादी कवि अपनी प्रिय अलौकिक सखी को संबोधित करता हुआ कहता है, अरे आली, तू अपने मधुर अधरों में तीव्र राग पिए हुए अपनी घुंघराली अलकावली में बसंत की शीतल मंद सुगंधित समीर को बंद किए हुए और अपनी आंखों में कोमल बिहाग राग को भरे हुए अभी तक सो रही है। अर्थात देख, उधर देश उधर प्रभात हो रहा है, किंतु न तो मुझे ध्वनि सुनाई पड़ रही है, न मुझे शीतल मंद सुगंधित समीर ही चलती हुई प्रतीत हो रही है और न कहीं से बिहाग राग की कोमल ध्वनि आ रही है। जान पड़ता है कि समस्त तीव्र ध्वनियाँ तो मेरे अधरों में बंद हैं, शीतल मंद सुगंधित समीर तेरी अलकावली में बंद हैं और कोमल बिहाग राग तेरी आँखों में बंद है, और जब तक तू नहीं जाएगी तब तक न मुझे तीव्र ध्वनि सुनाई देगी, न शीतल मंद सुगंधित समीर का अनुभव होगा और न बिहाग राग ही सुनाई पड़ेगा। विशेष कवि प्रसाद ने यह एक रहस्यवादी प्रभाती लिखी है। प्रायः हिंदी के सभी भक्त कवियों ने जागिए गोपाल लाल, भोर भयो अगना आदि के जरिए प्रभातियां गाकर किसी ने कृष्ण को जगाया है और किसी ने राम को। यहाँ कवि का प्रकृति प्रेम दृष्टव्य है। कवि ने प्रकृति सुंदरी की अत्यंत मनोरम झांकी अंकित करते हुए उषा को नागरी कहकर, किशले को अंचल मानकर, मुकुल को रस गागरी बताकर प्रकृति के सचेतन रूप को चित्रित किया है। कुलकुल सा बोल रहा कहकर कवि ने यह संकेत किया है कि जिस तरह किसी सुराही या बोतल में भरे हुए पानी को निकालने पर उसमें से कुलकुल किसी आवाज होती है, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती आवाज पक्षियों की भी होती है। लता के नवल मधुर रस से मुकुल गागरी भरकर लाने में पुनः कवि ने कलियों के विकसित होने में प्रकृति के सचेतन रूप का चित्रण करके मानवीकरण पद्धति का प्रयोग किया है। अंबर पनघट नागरी में सुंदर अभिधामूलक आर्थी व्यंजना है जिसमें तारों के डूबने अथवा प्रभात होने की सूचना मिल रही है। प्रसाद जी की अगली कविता का शीर्षक है वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आँखों की छाया भर थे, सुर धनु रंजित नव जलधार से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मीले चूमते जब सरिता के हरित कुल युग मधुर अधर थे, प्राण पपिया के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जलकन मालती मुकुल से जो मतमाते गंध विधुर थे, चित्र खींचती थी जब चपला नील मेघ पट पर वह बिरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे। इस कविता की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कविवर प्रसाद वर्षा काल का अत्यंत मादक एवं मोहक चित्र अंकित करते हुए कहते हैं, प्रणय की मादकता एवं सरसता से भरे हुए वे कुछ दिन कितने रमणीय थे, जबकि सावन के काले काले बादल उसी तरह वर्षा किया करते थे जिस तरह मेरी आँखों से हर्ष के आंसू वर्षा करते थे। अर्थात प्रणय की मादकता से भरे हुए वे दिन कितने सुंदर जान पड़ते थे, जब सर्वत्र प्रेम की वर्षा होती रहती थी और प्रेम एवं हर्ष की मादकता सदैव आँखों में भरी रहती थी। कभी पुनः अतीत के दिवसों को याद करता हुआ कहता है, प्रणय के हर्षोल्लास से भरे वे दिन कितने सुंदर थे, जबकि इंद्रधनुष के सुशोभित नए नए बादल संपूर्ण आकाश में फैलकर क्षितिज के छोर तक छा जाते थे, और जो वर्षा से उफनती हुई नदियों के दोनों किनारों रूपी होठों का चुंबन किया करते थे। अर्थात वे दिन कितने सुंदर थे जब नई नई उमंगों से भरा प्रेमी हृदय अपने यौवन से परिपूर्ण प्रेमिका के दोनों पक्षों दोनों मधुर अधरों का रसपान किया करता था। कभी पुनः प्रणय काल की मादक स्थिति का स्मरण करता हुआ कहता है, वे दिन कितने सुंदर थे जब पपीहा के प्राण पी पी के स्वर में बोला करते थे, चारों ओर हरियाली छाई रहती थी और मालती की कलियों से झड़ने वाले मकरंद के मादक रस से संपूर्ण वातावरण मधमाती सुगंधि से बेचैन दिखाई देता था। अर्थात वे प्रणय के दिन कितने रमणीक थे, जबकि मेरे प्राण पपीहा की तरह आकुल व्याकुल होकर अपनी प्रियतमा को पुकारा करते थे। सर्वत्र आनंद उल्लास छाया रहता था और मेरी प्रेयसी के प्रेम की मधुर सुगंधि से संपूर्ण वातावरण सरस एवं मोहक बना रहता था। अंत में कवि अपने प्रणयकालीन दिनों का स्मरण करता हुआ कहता है, वे दिन कितने सुंदर थे जब नीचे बादलों के पर्दे पर बिजली अत्यंत विलक्षण चित्र अंकित किया करती थी और उन चित्रों में मुझे वे मधुर रूप दिखाई दिया करते थे जो मेरे जीवन में कभी साथ रहे थे और जिनकी स्मृति उस समय तक बराबर बनी हुई थी। अर्थात बादलों में बिजली चमकते ही मुझे अपनी उन रूपाशियों का स्मरण हो जाता था जो बिजली के समान उज्ज्वल एवं श्वेत वर्ण की थी, अथवा जिनके शरीर की आभा एवं कांति बिजली के समान दीप्यमान रहा करती थी। विशेष यह सारी कविता छायावाद की उत्कृष्ट पद्धति पर लिखी गई है, जिसमें प्रकृति के मोहक व्यापारों के माध्यम से प्रणयकालीन सरस एवं मार्मिक व्यापारों का चित्रण किया गया है। जैसे सावन के बादलों के द्वारा प्रेम की मादकता के घिरने का, क्षितिज पर छाए बादलों के द्वारा सरिता के किनारों के चुंबन के माध्यम से प्रेमी एवं प्रेमिकाओं के चुंबन व्यापार का, पपीहा के स्वर के द्वारा प्रेमी के प्राणों की अनुकूलता का, मालती मुकुल के द्वारा प्रेसी प्राप्त प्रेमानंद का और बिजली के द्वारा प्रेसी के अंग सौंदर्य का चित्रण किया गया है। प्रसाद के अगली कविता का शीर्षक है मेरी आंखों की पुतली में। मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रहे, जिससे कण कण में स्पंदन हो, मन में मलया नील चंदन हो, करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रहे, खींच जाए अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिसको यह विश्व करे देखा वह स्मित का चित्र बना जा रे। इस कविता की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार से है, यह एक प्रेम गीत है जिसमें कवि अपने अलौकिक प्रियतम से अपनी आंखों की पुतली में प्राण बनकर समा जाने का आग्रह करता है और कहता है कि आंखों में समा जाने के उपरांत वह ऐसा मधुर गीत सुनाए जिससे उसके शरीर के कण कण से स्पंदन होने लगे, मलयानील में व्याप्त चंदन की तरह शीतल हो जाए और हृदय में करुणा का संचार हो। उसके बाद कवि अपने प्रियतम को पुनः आग्रह करता है कि वह अपनी मधुर मुस्कान का ऐसा चित्र अंकित करे जिससे कवि के होठों पर भी मुस्कान की ऐसी रेखा खींच जाए कि जिसमें प्रियतम के माधुर्य भाव का अस्पष्ट आभास हो और जिसे सारा संसार देखता ही रहे। इस प्रणय गीत में कवि अपने प्रियतम से आग्रह करता है, हे प्रियतमा तू मेरी आँखों की पुतली में प्राण बनकर समा जा, अर्थात तू नई चेतना जागृत करता हुआ सदैव मेरी आँखों की पुतली में निवास कर। कभी अपने प्रियतम से फिर अनुरोध करता है, हे प्रियतमा तू आकर मुझे ऐसा जीवन गीत सुना दे जिसके सुनते ही मेरे शरीर के कण कण में हलचल मच जाए अथवा नूतन जीवनी शक्ति का संचार हो जाए, मेरा मन बासंती पवन में विद्यमान चंदन की सुगंधि की भांति शीतल एवं सुगंधित हो जाए, अथवा मेरे मन में बसंत की सी सरसता शीतलता एवं सुगंधि भर जाए और मेरे हृदय में करुणा का नव अभिनंदन हो, अर्थात मेरा हृदय जो अभी तक कठोर बना हुआ है वह करुणा से परिपूर्ण हो जाए। अंत में कवि अपने प्रियतम से फिर अनुरोध करता है, हे मेरे प्रियतम तू आकर मेरे सामने अपनी मुस्कान का ऐसा चित्र अंकित कर दे जिससे मेरे होठों पर भी मुस्कान की ऐसी छवि अंकित हो जाए जिसमें तेरा माधुर्य भाव स्पष्ट झलकता हो और जो इतनी आकर्षक, अनुपम, रमणीक एवं सुंदर हो कि सारा संसार चकित होकर उस मुस्कान को सदैव देखता ही रहे। विशेष यह भी एक रहस्यवादी गीत है जिसमें कवि अपने अलौकिक प्रियतम का इसलिए आह्वान कर रहा है कि उसकी आंखों में नई चेतना आ जाए, कण कण में नवीन स्पंदन होने लगे, मन में शीतलता एवं सरसता आ जाए, हृदय में करुणा का संचार हो और होठों पर मुस्कान आ जाए। यहाँ कवि ने गीत में कोमलता एवं सरसता का संचार करने के लिए कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है। कण कण में स्पंदन हो कहकर कवि ने यह संकेत किया है कि प्रियतम के प्रेरणा भरे गीत से उसके शरीर में शिथिलता एवं आलस्य जाता रहे और नई चेतना, नई स्फूर्ति एवं नवल जागरण की भावना जागृत हो जाए। संपूर्ण कविता में छायावाद की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं क्योंकि यहाँ रहस्यात्मक लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, मानवीकरण, उपचार वक्रता आदि का सुंदर प्रयोग मिलता है। प्रसाद जी के अगली कविता का शीर्षक है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। इस कविता में प्रसाद ने आधुनिक इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना का सजीव उल्लेख किया है। 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला नामक स्थान पर अंग्रेजी की सेना के साथ सिख योद्धाओं का अंतिम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिखों का सेनापति शेर सिंह उस समय संपूर्ण सिख जाति का एक प्रतिष्ठित नेता था। इसके झंडे के नीचे समस्त सिखों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तैयारी की थी। इसका साथी लाल सिंह सिखों का प्रधानमंत्री था और तेज सिंह सिखों का सेनापति था। ये दोनों व्यक्ति 21 दिसंबर 1845 में अंग्रेजों के साथ होने वाले सिखों के युद्ध के समय में ही अंग्रेजों से जा मिले थे और सिख सेना की संपूर्ण गतिविधियों का विवरण अंग्रेजों के पास भेजते रहते थे। 1849 में पहले तो अंग्रेजों के साथ चिनाव नदी के किनारे रामनगर में सिखों का भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हार जीत का कोई फैसला न हो सका। तत्पश्चात 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला में विशेष संग्राम हुआ जिसमें सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह के हाथ में था और सिख विजयी होने वाले थे। तभी इनके प्रधानमंत्री लाल सिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया। उसने बारूद की जगह आटा भरवा दिया और लोहे के गोले की जगह तोपों के लिए काठ के गोले बनवा दिए जिससे सिखों की तोपें बेकार हो गई। इस युद्ध से पहले 10 फरवरी 1846 में भी लाल सिंह के सेनापतित्व में सिखों का युद्ध अंग्रेजों से हुआ था जिसमें लाल सिंह ने विश्वासघात करके सतलज का पुल तोड़वा दिया था जिससे बहुत सिख सेना सतलज में डूब गई थी और घर न लौट सकी थी। तभी से सिखों का पतन आरंभ हो गया था। यद्यपि सिखों ने आदम्य साहस था, अंततः बल था और वे तोपों को भी उलटने की शक्ति रखते थे, तथापि लाल सिंह के विश्वासघात ने उन सभी वीरों का मान मर्दन कर दिया था और उसे अंत में अंग्रेजों से हार गए थे। इस भयंकर हार को देखकर सिख नेता शेर सिंह का हृदय दहल उठा था और उसने प्राणों की भीख न मांगकर अंग्रेजों को अपना शस्त्र ही समर्पित कर दिया था। प्रसाद जी ने इस कविता में सिखों और अंग्रेजों के बीच हुए तत्कालीन युद्ध और उसके फलस्वरूप सिखों के दुखद पराजय का मार्मिक चित्र अंकित किया है। इस कविता में सिखों की रणसंगिनी तलवार की प्रशंसा के साथ साथ सिखों के शौर्य एवं पराक्रम की मनोरम झांकियां अंकित की गई हैं। साथ ही पंजाब के जीवित कलुच एवं देशद्रोही लाल सिंह के पर्याप्त भर्त्सना की गई है। इतिहास साक्षी है कि इस चिलियानवाला युद्ध में 24,000 अंग्रेज और 40,000 सिख मारे गए थे और सिखों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शेर सिंह के सेनापतित्व में बड़े साहस और उमंग के साथ अंग्रेजों का सामना किया था। यदि लाल सिंह धोखा न देता तो अंग्रेजों की हार निश्चित थी। कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से सिखों के शौर्य एवं पराक्रम की अद्भुत झांकी अंकित की है। पहला, ले लो यह शस्त्र है गौरव, ग्रहण करने का रहा कर में, अब तो न लेश मात्र लाल सिंह जीवित कलुष पंचनाद का, देख दिए देता सिंहों का समूह नख दंत आज अपना। सन 1849 के युद्ध के में सिख सेना के पराजित होने पर नेता शेर सिंह सिखों के प्रधानमंत्री लाल सिंह के देशद्रोही की भर्त्सना करता हुआ अंग्रेजों से कहता है, मेरा शस्त्र ले लो, अर्थात मैं अपनी तलवार आज तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। इसे ग्रहण करो, क्योंकि अब मैं इसे अपने हाथ में रखते हुए गौरव का अनुभव नहीं करता। इसका कारण यह है कि हमारे प्रधानमंत्री लाल सिंह ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अरे लाल सिंह, तू पंजाब का जीवित पाप है। देख, तेरी ही धोखाधड़ी के कारण आज समस्त सिख योद्धा सिखों की समूह अपने शस्त्र इस तरह समर्पित कर रहे हैं जिस तरह सिंहों का समूह नाखून और दांत समर्पित करता हो। दूसरा, अरे रण रंगिनी, सिखों के शौर्य भरे जीवन की संगिनी, कपिशा हुई थी लाल तेरा पानी पान कर, दुरंत धर्म दस्युओं की त्रासनी, निकल चली जा तू प्रतारण के कर से। अरे वह तेरी रही अंतिम जलन क्या, तोपे मुंह खोले खड़ी देखती थी त्रास से, चिलियान वाला में आज के पराजित जो विजयी थे कल ही, उनके समर वीर कर तू नाचती लप लप करती थी जीभ जैसे यम की। यहाँ सिख वीर शेर सिंह तलवार की प्रशंसा करता हुआ कहता है, अरे युद्ध के मैदान में शौर्य एवं पराक्रम का अभिनय करने वाली तलवार, तो सिखों के पराक्रम पूर्ण जीवन की चिर सहचरी रही है। अर्थात तेरे द्वारा ही सिखों ने शौर्य एवं पराक्रम दिखाया है। तेरा ही पानी पान करके चिनाव नदी भी लाल लाल हो गई थी। अर्थात चिनाव नदी के किनारे पर तूने शत्रुओं का इतना वध किया था कि उनके खून से चिनाव का जल भी रक्तरंजित हो गया था। तू तो धर्म पर आक्रमण करने वाले मदांध एवं प्रचंड धर्मद्रोहियों को भयभीत करती रही है। आज तुम भी मेरे उस हाथ से निकल कर चली जा, जो हाथ देशद्रोही नीच लाल सिंह की प्रवंचना का शिकार बना है। अरे मेरी तलवार, क्या तेरी अंतिम जलन थी, जबकि चिलियान वाला के मैदान में अंग्रेजों की तोपें भी मुंह खोले हुए तुझे अत्यंत भय के साथ देखती थी। और सिख आज अंग्रेजों से हार गए हैं, कल वे ही तेरे कारण विजयी भी कहलाए थे। तभी तो उन्हीं अंग्रेजों के सेना के बीच यमराज की जीभ के समान लपलपाती हुई सिख योद्धाओं के हाथों में नृत्य करती थी, अर्थात शत्रुओं की मार काट मचाती थी। तीसरा, उठी तू न लूट त्रास भय के प्रचार को, दारुण निराशा भरी आंखों में देखकर दृप्त अत्याचार को, एक पुत्र वत्स चला दुराशमयी विधवा प्रकट पुकार, उठी प्राण भारी पीड़ा से, और भी जन्मभूमि दलित विकल अपमान से त्रस्त होकर कराहती थी, कैसे फिर रुकती। सिख नेता शेर सिंह अपनी तलवार को समर्पित करता हुआ कहता है, अरे सिखों की तलवार, तू न तो किसी का धन लूटने के लिए या किसी को आतंकित करने के लिए कभी उठी, और न कभी भय का प्रचार करने के लिए तुझे सिखों ने धारण किया। तूने जब कभी यह देखा कि भयंकर निराशा से भरा हुआ कोई व्यक्ति तेरी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, तब उस अत्याचार का दमन करने के लिए तू उठी। तूने जब यह देखा कि कोई इकलौते पुत्र वाली विधवा हताश होकर प्राणों से वेदना एवं व्यथा भरकर तुझे पुकार रही है, तब तू उस अनाथ एवं असहाय विधवा की पुकार का पर उसका दुख दूर करने के लिए उठी। इसके अतिरिक्त जब तूने यह देखा कि तेरी जन्मभूमि शत्रुओं के पैरों तले कुचली जाकर अथवा शत्रुओं से पदाकांत होकर अपमान से बेचैन हो रही है और अत्यंत दुखी है और अत्यंत दुखी होकर कराह रही है, तब तू उठी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भला तू कैसे रुक सकती थी। चौथा, आज विजयी हो तुम और है पराजित हंस हम। तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है। वीरभूमि पंचनाद वीरता से रिक्त नहीं, काठ के गले हो गले जहाँ आटा बारूद हो, और पीठ पर हो दुरंत दसनों का त्रास, छाती लड़ती हो भरी आग बाहुबल से, उस युद्ध में तो बस मृत्यु ही विजय है। सिख सेनापति शेर सिंह अपने प्रधानमंत्री लाल सिंह के छल कपट की ओर संकेत करता हुआ अंग्रेज से कहता है, यह निश्चित है कि आज तुम विजयी हो और हम पराजित हुए हैं। यह बात तुम ही नहीं कहोगे, अपितु इतिहास भी कहेगा कि किंतु जिस विजय की तुम्हारी मन में प्रशंसा भरी हुई है वह धोखा मात्र है, क्योंकि यह याद रखो कि यह विजय तुमने धोखे से प्राप्त की है। वीरभूमि पंजाब आज भी वीरता से खाली नहीं है, परंतु पंजाब के वीर क्या करें जिन्हें लोहे के गोलों की जगह तोपों के लिए काठ के गोले दिए गए हों, जिन्हें बारूद के स्थान पर आटा दिया गया हो और फिर जिनकी पीठ पर विश्वासघात करने वाले देशद्रोही भयंकर डंक मारकर भय पहुंचा रहा हो, अर्थात जिनके पीठ पीछे छल कपट का कार्य चल रहा हो, साथ ही जो अपने हृदय में अदम्य साहस एवं अपूर्व उमंग लेकर केवल भुजाओं के बल पर ही लड़ रहे हों, किंतु ऐसे छल कपट के युद्ध में उन साहसी एवं पराक्रमी वीरों को मृत्यु के विजय के सिवा और भला क्या मिल सकता था। इसी कारण वे अतुलित पराक्रमी एवं सर्वसारणी सिख पराजित हो गए। 5. सतलज के तट पर मृत्यु श्याम सिंह की देखी होगी तुमने भी वृद्ध कथा, वीर मूर्ति वह तोड़ा गया पुल प्रत्यावर्तन के पथ में अपने प्रवंचकों से लिखता हुआ अदृष्ट था। विधाता वाम कर से छल में विलीन, बल बल में विषाद था विकल विलास का। यवनों के हाथों में स्वतंत्रता को छीन कर खेलता था यवन विलासी मत पंचनद, प्रणय विहीन एक वासना की छाया में फिर भी लड़े थे हम निज प्राण पण पण से। यहाँ सेनापति शेर सिंह सन 1846 में सतलज के किनारे सुअराओं में युद्ध की ओर संकेत करता हुआ अंग्रेजों से कहता है, पहले सन 1846 में जब तुम्हारे साथ सिखों को तुमने देखा होगा, उस वीर सिख सेनानी की मृत्यु भी सतलज के किनारे विश्वासघात के कारण ही हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे ही सिख सेना लड़ती हुई सतलज नदी के किनारे पहुंची थी, वैसे ही अपने विश्वासघाती देशद्रोहियों ने उसे उस पुल को तोड़ दिया था, जिससे अधिकांश सिख नदी में डूब गए थे और लौटकर घर वापस न आ सके थे, तथा उसी लड़ाई में श्याम सिंह जैसा महान वीर भी मारा गया था। उसी समय विधाता ने अपने बाएं हाथ से सिखों का भय भाग्य लिख दिया था, क्योंकि सिखों की समस्त शक्ति छल कपट में डूब गई थी, अर्थात सिखों के साथ छल कपट में विश्वासघात आरंभ हो गया था। ऐसे कष्टप्रद कार्यों के कारण सिखों की सारी सेना में शोक छा गया था। ये वही सिख सैनिक थे जिन्होंने यवनों को हरा कर पंजाब को स्वतंत्र किया था, और जो यद्यपि यवन की विलासमयी क्रीड़ाओं से उन्मत्त रहते थे तथा प्रेमहीन वासना की छाया में लीन रहते थे, फिर भी जो अंग्रेजों से अपनी पूरी शक्ति से लड़े थे। 6. कहेंगी शत्रु सत संगरों की साक्षिणी, सिख थे सजीव स्वत्व रक्षा में प्रबुद्ध थे, जीना जानते थे मरने को मानते थे सिख, किंतु आज उनकी अतीत वीरगाथा हुई जीत होती जिसकी वही है आज हरा हुआ। सिख नेता शेर सिंह सिख योद्धाओं की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि सतलज नदी सिखों के सैकड़ों युद्धों की गवाह है, इसलिए वह स्पष्ट शब्दों में कहेगा कि सिख अत्यंत जीवंत वाले व्यक्ति थे, वे अपने अधिकार की रक्षा के सदैव जागरूक रहते थे। वे जिस तरह सम्मान एवं गौरव के साथ जीना चाह जानते थे, उसी तरह वे बलिदान करने में भी गौरव समझते थे, परंतु आज उनकी वीर गाथाएं अतीत के गर्व में लीन हो गई हैं। जो सिख सेना सदैव विजय प्राप्त किया करती थी, वही आज पराजित हो गई है। 7. ऊर्जस्वित रक्त और उमंग भरा मन था, जिन युवकों के मणिबंधों में अबंध बल इतना भरा था, जो उलटता सतध्वनियों को गोले, जिनके थे गेंद अग्निमय क्रीड़ा थी। सिख नेता शेर सिंह अपने सिख वीरों की प्रशंसा करता हुआ कह रहा है, जो सिख सैनिक विश्वासघात के कारण पराजित हो गए थे, उनकी धमकियों में शक्तिशाली खून उमड़ता रहता था और उनका मन उमंग से भरा रहता था। उन सिख वीरों की कलाइयों में इतनी असीम शक्ति भरी हुई थी कि वे तोपों को भी उलट सकते थे, क्योंकि वे सिख वीर तोपों के गोलों से ऐसे खेलते थे जैसे मानो वे गेंद से खेल रहे हों। वे तोपों से बरसने वाली आग को आतिशबाजी जैसा खेल समझते थे, और वे रण क्षेत्र में बहने वाली खून की नदी में सिर और छाती ऊंची करके तैरते थे, अर्थात वे रण क्षेत्र में शत्रुओं का वध करते हुए बड़े निर्भीकता एवं स्वाभिमान के साथ युद्ध करते थे। 8. वीर पंचनद के सपूत मातृभूमि के सो गए, प्रताड़ना की थपकी लगी उन्हें, छल बल वेदी पर हाथ सब सो गए, रूप भरी आशा भरी यौवन अधीर भरी पुतली प्रणयिनी का बाहुपाश खोल कर। दृश्य भरी दूध सी दुलार भरी माँ की गोद सुनी कर सो गए हुआ है सोना पंचनाद। सिख नेता शेर सिंह यहाँ अपने प्रधानमंत्री लाल सिंह के छल कपट एवं विश्वासघात के कारण मरने वाले सिख योद्धाओं को दयनीय स्थिति को स्मरण करता हुआ कहता है, वे सिख योद्धाओं जो पंजाब के वीर कहलाते थे और मातृभूमि के सच्चे सुपुत्र थे, अपने प्रधानमंत्री लाल सिंह के छल कपट एवं विश्वासघात के परिणाम स्वरूप आज मृत्यु की गोद में सबके सब इस तरह सो गए जिस तरह माता की धमकियों से उसकी गोद में बालक सो जाता है। वे असीम सौंदर्यमयी आशाओं से भरी हुई उदास यवन में संपन्न अपनी अपनी प्रिय पत्नियों के भूज पास को खोलकर तथा उन्हें सदैव के लिए सुना करके मृत्यु की गोद में सो गए हों और अपने अपने माताओं की दूध भरी और दूध के समान पवित्र दुलार से भरी हुई गोदों को सुना करके मृत्यु की गोद में सो गए हैं, इसलिए आज सारा पंजाब सिख वीरों से सुना हो गया है। नौवां, भिक्षा नहीं मांगता हूँ आज इन प्राणों की, क्योंकि प्राण जिसका आहार वही इसकी रखवाली आप करता है। महाकाल ही शेर पंचनद का वीर रणजीत सिंह आज मरता है, देखो सो रहा है पंचनद आज उसी शोक में, यह तलवार लो, ले लो यह छाती है, ले लो यह धाती है। सिख नेता शेर सिंह अंत में अपनी तलवार अंग्रेजों को समर्पित करता हुआ कहता है, मैं आज तुमसे प्राणों की भीख नहीं मांगता, क्योंकि वह मृत्यु का देवता या महाकाल ही मेरे इन प्राणों का रक्षक है, जिसका कि प्राण ही भोजन है, अर्थात जो महाकाल नित्य संसार महाराजा रणजीत सिंह ही इन समस्त सिखों के रूप में मर रहा है। अर्थात यद्यपि महाराजा रणजीत सिंह जीवित थे, किंतु आज जब उनकी समस्त शक्तिशाली सेना नष्ट हो रही है, तब उस सेना को मरने पर अब राजा रणजीत सिंह की भी मृत्यु हो रही है और आज सारा पंजाब उसी शोक में सो रहा है, इसलिए मैं भी अपनी यह तलवार तुम्हें समर्पित करता हूँ, उसे ग्रहण करो, यह तलवार भी राजा रणजीत सिंह की धरोहर है जो अभी तक मेरे पास थी। इसके साथ जयशंकर प्रसाद के लहर में लिखित कविता एवं उसकी व्याख्या समाप्त होती है।